देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। आज किसी व्यक्ति के, जैसे पिछली बार मैंने आप सबको रिक्वेस्ट किया था, आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सुनना है, जानना है, तो आप मुझे बताएं। तो श्रृंखला में आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, विच आर द स्टैच्यू ऑफ आर्य समाज, 10 प्रिंसिपल्स, आपको ये वॉल के दोनों तरफ भी पोल में लगे हुए होंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपको हर जगह मिलेंगे। तो उनको सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये 10 जो स्टैच्यूज है, जो रूल्स है, ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज के लिए बनाया। ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन किसके बेस पर चले, क्या क्या इसकी व्यूज हो, प्रिंसिपल्स हो, उसकी एवरी एक्टिविटीज की जो परख है, वो 10 रूल्स के थ्रू होना चाहिए। इसकी 3 सबसे बड़ी चीज जो नोट करने लायक है, आप प्रवचन के बाद भी दोबारा जरूर पढ़ लीजिए, वॉल में लिखा है, गूगल में आपको हर जगह मिलेगा। पहली चीज ये कि दसों के दसों जो स्टैच्यूज है, जब प्रिंसिपल्स है, वो बड़े कॉस्मोपोलिटन है। व्यक्ति किसी भी टाइम पीरियड में हो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, जियोग्राफिकल बाउंड्री में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी तरह के स्टेट में हो, ये 10 चीजें उन सबको लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है जो ह्यूमैनिटी का भला चाहते हैं, जनरल इंसान की भला चाहते हैं। पहला रूल है जो स्वामी जी ने जिस सोच के साथ इन 10 रूल्स को बनाया। नंबर 2, इसमें जो एम्फेसाइज किया गया है, एक तो ईश्वर की डेफिनेशन, नंबर 2 हमारा स्क्रिप्चर्स, ट्रूथ, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन 10 नियमों में है, द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो हार्मोनी, जो एक रिलेशनशिप होता है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए व्यक्ति को जो करना चाहिए, वो भी इन 10 नियमों में आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3, ऋषि दयानंद जी के पूरी जिंदगी में जो भी उन्होंने जिंदगी में जो पढ़ा, सीखा, एक्सपीरियंस किया, उन सब का जो उन्होंने किताबें लिखी, दर्जन सब बुक्स, उन सब के निचोड़ के रूप में, जो एसेंस के रूप में ये 10 नियम आपको झलकेगा। रिमेम्बर, स्वामी ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि मैंने जो कुछ कहा, लिखा, पढ़ा, उनमें मेरा विचार 0 है। वो विचार है जो वेद से लेकर जैमिनी तक जितने भी ऋषि मुनियों हुए हैं, उनके लिखे गए ग्रंथ हैं, जिनको मॉडर्न हिंदू सोसाइटी ऑलमोस्ट भूल चुके हैं या पीछे छोड़ चुके हैं, उन सभी वेद से लेकर जैमिनी तक जितने भी हिंदुओं के मूल धर्मशास्त्र है, उन सब का निचोड़ है। तो इन 10 नियमों में भी आपको उन शास्त्रों का झलक दिखने को मिलेगा, उनकी जो सोच है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्वामी आर्य समाज का जो पहला स्टैच्यू है, स्वामी जी ने हिंदी में लिखा था, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हिंदी को पहले जानें। आप चाहे तो मेरे साथ रिपीट करें, ये सारे के सारे 10 नियम वैसे ही हैं जैसे गीता के श्लोक या उपनिषद के मंत्र होते हैं, बहुत भी पावरफुल होते हैं। प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, पर इतनी सुपरफिशियली पढ़ते हैं कि कभी कोशिश नहीं करते हैं इसमें एक्चुअली लिखा क्या है। तो ऐसे ओकेजन होता है जहां हम इन चीजों को समझ सकते हैं। मेरे साथ बोलिए जरूर, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसका सिंपल मीनिंग है, द परमेश्वर, द सुप्रीम गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज एंड ऑल दैट इज नोन थ्रू दिस नॉलेज। टू थिंग्स, एक नॉलेज है एंड समथिंग व्हिच इज नोन बाय नॉलेज। वो कौन सी चीज है जो नॉलेज के द्वारा जाना जाता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसको आप नॉलेज के, एवरीथिंग जो भी इस दुनिया में है उसका एक नॉलेज होता है, उसको जानना होता है, तभी उसकी एग्जिस्टेंस मैनिफेस्ट होता है। ये श्वेताश्वेत और उपनिषद का मंत्र इसी बात को प्रूफ करता है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सश्रृणोत्य कर्ण सवेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरर्ग्यम पुरुषम पुराणम। इंग्लिश में मीनिंग लिखा है आप देख लेंगे, पर इसके जो अंडरलाइनिंग चीज है, दैट गॉड विदाउट एनी ऑर्गन लाइक ह्यूमन बींग, जैसे ह्यूमन बींग के ऑर्गन्स होते हैं, नोज एवरी थिंग एवरी विंग ऑल, बट नो वन कैन नो हिज लिमिट्स। हम उसकी लिमिटेशन को जान नहीं सकते, पर ईश्वर वो सबको जानता है, सारे ज्ञानों का वही सोर्स है। उस टॉपिक को एलाबोरेट करने से पहले दो तीन चीजें जानना जरूरी है। आर्य समाज का ये पहला रूल क्या बताता है आर्य समाज के बारे में, दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए थेइस्टिक बॉडी। ये ईश्वर को मानने वाले लोगों की संस्था है। ईश्वर वो ईश्वर नहीं जो इमेजिनरी लोगों ने कल्पना से बनाया, वो उन लोगों की संस्था नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये उन लोगों की संस्था नहीं है जो ईश्वर पर क्वेश्चन उठाते हैं, वो उन लोगों की संस्था भी नहीं है जो ईश्वर को अपनी कल्पना से, इमेजिनेशन से बनाया है। गॉड इज आज ट्रूथ आज आवर ओन एसेंस। सो हम उसी सच्चाई के साथ ईश्वर को मानते हैं। ये पहला रूल आर्य समाज की बैकग्राउंड को बताने की कोशिश करता है। नंबर टू, जो ट्रूथ और नॉलेज, और इस ट्रूथ और नॉलेज का जो प्राइमरी सोर्स है वो भी ईश्वर है, भगवान है। मजेदार बात आपको बताएं, भारत में मोस्ट ऑफ लोग जो आर्य समाज को दूर से जानते हैं, उनकी ये परसेप्शन है जो डेलिबरेटली बनाया गया या अचानक हो गया कि आर्य समाज एक एथिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भगवान भगवान को नहीं मानता। वो कभी आर्य समाज के अंदर आते ही नहीं है। जब पहली बार अंदर आते हैं पता लगता है, अच्छा आपकी यज्ञशाला है, अच्छा आप हवन भी करते हो, अच्छा वेद भी मानते हो, अरे वाह, अच्छा अच्छा आप ये भी मानते हो। ये क्योंकि आर्य समाज की जो एक विचारधारा रही है क्वेश्चन करने की, कुछ भी करते हो उसके पीछे या तो शास्त्रों का कोई बैकग्राउंड हो या कोई लॉजिक रैशनलिटी की बैकग्राउंड हो, अगर दोनों, ये सवाल आर्य समाज करता रहा है। इसीलिए नॉर्मल लोगों को या जो ट्रेडिशनल वे में चलने वाले लोग हैं उनको हमेशा ये डाउट हुआ है, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जरूर एथिस्ट होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में बच्चे, अब हम लोग तो अमेरिका में रहते हैं, थोड़ा बहुत अमेरिकन कल्चर से फैमिलियर हो गए, उतने ज्यादा नहीं है, पर जैसे कि इंडियन कल्चर में बच्चे अगर माँ बाप से सवाल पूछने लगे तो हम सोचते हैं बच्चा बिगड़ गया। क्लास में बच्चा अगर टीचर को बार बार सवाल पूछे, टीचर्स को लगता है ये बदमाश है। वही आर्गुमेंट आर्य समाज के बारे में परसेप्शन बना, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं तो इसलिए ये बिगड़े हुए सत्ता है। आर्य समाज का पहला रूल ये क्लैरिफाई करता है कि हम ईश्वर पर श्रद्धा करते हैं, मानते हैं। ईश्वर समस्त ज्ञान का मूल सोर्स है। नंबर टू, वो ज्ञान के द्वारा जाने जाने वाले कोई भी चीज, द होल यूनिवर्स इज नोन बाय द नॉलेज ओनली, ऑल्सो ईश्वर उसका ओरिजिन है। पतंजलि का योग दर्शन कहता है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो जो ईश्वर है समस्त ज्ञान का जो सीड है, जो उसकी ओरिजिन है, वो ईश्वर में ही होता है। और न केवल इतना, स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेना नवच्छेदात्, मेरा कोई गुरु है, टीचर है, जिसने मुझे ज्ञान दिया है। टीचर दो तरह के हो सकते हैं, कोई पर्सन जिससे आपको नॉलेज मिलता है, और द बुक जहां से आपको नॉलेज मिलता है, वो बुक भी आपका गुरु है, वो ग्रंथ भी आपका गुरु है, वो व्यक्ति भी आपका गुरु है। इसीलिए सिख संप्रदाय में उन्होंने इंडिविजुअल को गुरु नहीं माना, ग्रंथ को गुरु माना, क्योंकि ग्रंथ के सामने सब छोटा है। पर गुरु वो है जहां से हमें कुछ नॉलेज मिले, और ईश्वर उन सभी गुरुओं के गुरुओं के गुरु है। सभी गुरुओं का गुरु कैसे होगा जो क्योंकि ईश्वर के लिए टाइम कभी ऑब्स्टिकल नहीं होता है, इट्स बियॉन्ड द कंडीशनड टाइम। दो चीजें, ज्ञान, सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान में क्या फर्क है? जनरली जो हमारे पास नॉलेज होता है, अगर हमारे सेंसेस में प्रॉब्लम हो, या हमारे एटीट्यूड में प्रॉब्लम हो, या हम बहुत ज्यादा लेजी हैं, तो मोस्ट ऑफ हमारे नॉलेजेस अनट्रू होता है। अनट्रू का मतलब जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना। बड़े इंटरेस्टिंगली आपको बात बताऊं, हमारे शास्त्रों में जो नॉलेज का डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता वेस्टर्न फिलोसोफर नॉलेज को कैसे डिफाइन करते हैं। भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र में कहते हैं यथार्थानुभव ज्ञानम, द ट्रू रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस इज नॉलेज। सो ट्रूथ इज वेरी मच पार्ट ऑफ नॉलेज। पर जो कुछ हमारे पास ज्ञान है वो सारे ट्रूथ है ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ हमारा जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो फॉल्स है। आपको आपकी पत्नी के बारे में भी 25-40 साल के बाद भी, या पत्नियों को पति के बारे में भी जो नॉलेज है, उनमें मोर देन हाफ आर फॉल्स, ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ अज्यूम करते हो मेरे साथ जो 10-20-50 साल से रहा है उससे, कि अच्छा ये ऐसा सोचता होगा, इसका माइंड ऐसा हुआ होगा, पर अंदर बहुत कुछ और है जो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, घर जाकर पूछना नहीं, डंडा नहीं बैठाना कि बताओ सच क्या है, वो पता चलेगा भी नहीं आपको। कुछ सच हो सकता है उनके फ्रेंड्स को पता हो जो आपको पता नहीं है, कुछ चीजें उनके फ्रेंड्स को नहीं पता जो आपको पता है, कुछ चीजें उनके माँ बाप को पता जो आपको पता नहीं, कुछ चीजें उनके माँ बाप को पता नहीं जो आपको पता है। और ओवरऑल आप देखिए, मोर देन 50% आपका नॉलेज आपके स्पाउस के बारे में फॉल्स है। बट स्टिल यू थिंक दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट माई स्पाउस। इसी तरह बच्चों के बारे में भी माँ बाप की बड़ी गलत फहमियां होती है। हम अपने बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं, कुछ नहीं जानते, 20-30% मैक्सिमम जानते हैं। बच्चे जब अचानक कुछ कर बैठते हैं तब कहते हैं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता। वो आपका प्रॉब्लम था कि आप मान बैठे थे कि मैं बच्चे को अच्छी तरह जानता हूं। कोई जान भी नहीं सकता ऐसा नहीं कि वो, इसीलिए कि आप ये अपना बर्थ राइट समझ बैठते हैं कि मेरे पास जो मेरे क्लोज लोग हैं मैं उनके बारे में सब कुछ जो बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं या सब कुछ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी स्पाउस ने आपसे झूठ बोला या बच्चों ने झूठ बोला, यही है कि बहुत कुछ चीजें बताया नहीं, बताने का मतलब नहीं था, टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। हम अपने घर के बारे में अगर इतना कम जानते हैं, हाँ कैसे आप कह सकते हैं कि आप दुनिया के बारे में सब जानते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लोगों को हम जज करते हैं ना, वो जज इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम हम जज करते हैं क्योंकि हमारा परसेप्शन ऑलरेडी बना हुआ है। हम दो चार चीजें भा हा भा बातचीत वगैरह देख के समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हुआ होगा, और मोस्ट ऑफ टाइम ये फॉल्स होता है। जिनको हम खराब समझते हैं, आज बैठने के बाद क्लोज होने के बाद पता लगता है बड़ा अच्छा आदमी है। जिसको हम बड़ा इगोइस्टिक समझते हैं, जब बातचीत करते हैं मिलते जुलते हैं पता लगता है ये बड़ा रिजर्व टाइप का आदमी है, बड़ा शाय टाइप का आदमी है, आसानी से घुलता मिलता नहीं है, इसीलिए इसको हम इगोइस्टिक समझते थे। हम ही कुछ फिर एडवोकेट करने लगते हैं, नहीं ये आदमी बड़ा अच्छा है, प्रॉब्लम है कि ये कम बोलता है, बड़ा शाय है, इसीलिए दूर से इगोइस्टिक लगता है। पर शुरू में मिसपरसेप्शन था। इसी तरह उल्टा होता है, जो बहुत ज्यादा मिलता घुलता मिलता मीठा बोलता है, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, देखो घर आते ही हर काम में हाथ मटा देता है, मीठा मीठा बोलता है, पता चला अंदर बड़े जहर रखा है वो भी। मतलब ऊपर से जज हम आसानी से कर लेते हैं। इसका बटम लाइन है कि मोस्ट ऑफ जो हमारा नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज नहीं है, और नेचुरली उन सबका सोर्स ईश्वर हो नहीं सकता। इसीलिए ऋषि दयानंद क्लारीफाई करते हैं, जो यूनिवर्स में जो कुछ एग्जिस्ट करता है और आज इट इज है, उसका वो और उसका जो नॉलेज है आज इट इज, उसका सोर्स ईश्वर है, न कि जो तुम्हें और हमें पता है उसका सोर्स ईश्वर है। हमें और आपको जो पता है वो हमारी अपनी लिमिटेशंस है जानने का, और वो ऐसा सच जो या ज्ञान है जो क्विकली फेडिंग बड़े जल्दी चेंज भी होता है। अभी मिलते ही आपको लगा कि ये अच्छा है बुरा है, आधे घंटे के अंदर ही आपके ओपिनियन बदल सकता है। बाजार गए या एडवर्टाइज देखा, कोई सामान आपको अच्छा लगा बहुत अच्छा चीज है, या लगा बड़ा बेकार होगा, खरीद के लाए एक दिन दो दिन पांच दिन के बाद पता चला जो सोचा था उसका अपोजिट है। यह हमारी लिमिटेशन है, पर सत्य वो नहीं है जो हमें पता है। सत्य ऑलवेज सेकुलर होता है, वो किसी के जाने हुए चीजों पर बेस्ड नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। और उस सत्य का जो नॉलेज है दैट इज सत्य ज्ञान, उस ज्ञान का परमात्मा उसी का सोर्स है। बड़े मजेदार बात आपको बताएं, हमेशा से हजारों लाख हजारों सालों से इंडियन कॉन्टिनेंट में जितने भी अलग अलग स्कूल ऑफ नॉलेज हुए हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से लेकर साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, लिटरेचर, ग्रामर, आप नाम लीजिए, फिलॉसफी, सारे एंशिएंट जो भी लिटरेचर इंडिया में बने हैं, सभी शास्त्रों के शुरू में ये प्रसंग आता है कि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं ये मेरा नहीं है, ऐसा हमने कहीं से लिया है, सुना है। आप उसे पुराना बुक पढ़ेंगे वो भी कहेगा हमने किसी से लिया है, ये हमारा नहीं है। बिल्कुल अपोजिट जो कंट्रास्ट है जो मॉडर्न सोसाइटी में होता है। हम कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, लिखते हैं, बुक बनाते हैं, हम सीधा ऑथरशिप की क्लेम करते हैं, ये मेरा अपना ओरिजिनल थॉट है। 90% जो हम बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, वो सब ओरिजिनल नहीं है, हमने कहीं से लिया, सुना, सीखा, पर दावा खुद का करते हैं। और हमारे एंशिएंट इंडिया ठीक इसका अपोजिट था। कोई भी ज्ञान वो देते थे वो इस कंडीशन के साथ जरूर बताते थे कि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कहां से आया? अब धीरे धीरे जब हम माइथोलॉजी बेस्ड रिलीजन बन गए, हिंदू धर्म जो आज का हिंदू धर्म है इट्स टोटली बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, उसमें फिर हमने वही कंसेप्ट को माइथोलॉजिकली ले आए कि ये नाटक कहां से शुरू हुआ, ना शिव ने शुरू किया, लैंग्वेज कहां से आई, ना शिव से शुरू हुई, ये साइंस कहां से शुरू, आप किसी भी फील्ड में जाओ सबका सोर्स शिव, वो माइथोलॉजी का जो बैकग्राउंड है कि सारे ज्ञानों का ईश्वर से ही प्रकट हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को भी उनके अंदर ज्ञान को प्रकट किया, इसी तरह ईश्वर ने हमारे अंदर वो मैकेनिज्म बना रखा है, वो इंटेलेक्ट, वो बाकी चीजें, माइंड, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता रहता है, वो ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए पहला नियम है, ईश्वर जो है वो समस्त ज्ञान और ट्रुथ, जब आप ट्रुथ कहते हैं द यूनिवर्स इज एग्जिस्ट, ट्रुथ का सिंपल मीनिंग होता है कोई चीज एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में और उस एग्जिस्टेंस का जो भी नॉलेज है, उन दोनों का प्राइमरी सोर्स ईश्वर है। सेकेंड नियम उसी से रिलेटेड है, वो ईश्वर का को कैसे डिफाइन करें, तो स्वामी जी लिखते हैं सेकेंड नियम में, मेरे साथ बोलिएगा, आपकी जो थोड़ा बहुत अगर आप टायर्ड हो गए होंगे वो भी दूर हो जाएगा, पर बोलिए जरूर। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसकी लास्ट नाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की उपासना करने योग्य है। इंग्लिश में आप मीनिंग देख लेंगे, हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे, पर जो लास्ट लाइन है उसकी अंग्रेजी में बताना जरूरी समझता हूं। दैट गॉड अलोन इज वर्थी ऑफ बीइंग वर्शिप्ड। ये मैं क्यों जोर से बोला थोड़ा लाउडली, क्योंकि हम लोग उसी ईश्वर को छोड़कर बाकी सब पूजने लग गए। उस परमात्मा परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, हमें बनाया, हमारा क्रिएटर है, सस्टेनर है, केयरटेकर है, सब कुछ वही है, उसी को छोड़कर हर कोई पूछता है, ईश्वर के नाम पर सबको पूछता है सिवाय उसको। किसी भी रिलीजन की, जो मॉडर्न जितने भी रिलीजन है इंक्लूडिंग हमारा हिंदू रिलीजन में, हम ईश्वर को छोड़ करके जीसस को पूछते हैं, ईश्वर को छोड़ करके इसको पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं, पौधा को पूछते हैं, बाबाओं को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, अमुक देवी को, अमुक देवता, सबको पूछते हैं सिवाय ईश्वर को। और शास्त्र कहता है वही केवल पूजा के योग्य है जो ईश्वर है। केनोपनिषद में वो आता है, छह बड़ा सुंदर मंत्र है, और हर मंत्र के नीचे आता है, तुम जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म वो है जिसको तुम जान नहीं सकते हो। अब हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चलते हैं। वो ईश्वर जो अडोरेबल है, ओनली वर्थी ऑफ वर्शिपिंग है, वो पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं है। दो तरह की ईश्वर की अवधारणा है, परसेप्शन है, एक तो वो इम्पर्सनल है ईश्वर है, जैसे कि न्यू वेदांतिक लोग, जो आजकल वेदांता के नाम पर ज्यादा चलता है, जो वर्ड आप वेदांता इधर उधर सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनली नव्य वेदांत, मतलब न्यू वेदांतिक। वेदांत दर्शन से उसका बहुत कम रिलेशनशिप है, वो एक नया इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत जो मोस्टली 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और बेसिकली कॉन्सेप्ट है ईश्वर जो है वो इम्पर्सनल है, इनएक्टिव है, डूइंग नथिंग, बस एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट, बाकी दुनिया में और बहुत कुछ है। आर्य समाज का दूसरा नियम कहता है वो ईश्वर जिसमें क्वालिटीज भी है, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी है, कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी है, उन सब का हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। पहला क्वालिटी है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत मतलब एग्जिस्ट करता है, द एग्जिस्टेंस इज द फर्स्ट नेचर, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ गॉड। पर एग्जिस्ट दुनिया में हम सब करते हैं, पर हमारी एग्जिस्टेंस बड़ा टेम्पररी होता है। मतलब आज है, 50 साल पहले हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, 10-20-50 साल के बाद भी नहीं रहेगा, हर एक की अपनी अपनी है, मरने के बाद नहीं रहेगा, पैदा होने से पहले नहीं था। दुनिया में कोई भी चीज देखते हैं वो एग्जिस्ट करता है, पर अपने होने से पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। 3 चीजें हैं, आप जब भी पूछो वो एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे, 3 चीजें। और कौन वो 3 चीजें हैं? मतलब अगर आप मिलियन ईयर्स बिफोर भी कोई पूछता, वो हैं तो हैं, थे, आज भी हैं, और मिलियन ईयर्स के बाद भी, ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स के बाद भी उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। एक तो ईश्वर परमात्मा, सुप्रीम गॉड, एवर एग्जिस्टेंस। हम भी, मतलब हम, मतलब ये शरीर ही नहीं, हमारा जो असेंस है, आत्मा, सोल, इंडिविजुअल सोल, वो भी हमेशा एग्जिस्ट करता है, शरीर बदलता रहता है। गीता पढ़ते हैं तो आपको पता है, हैं? कैसे कपड़ों के तरह शरीर बदलता रहता है आत्मा, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, न पैदा नहीं होता है। नंबर 3, ये जो मैटर है, ये जो वर्ल्ड जहां से बना है, इसकी जो जो प्राइमरी एलिमेंट्स है, जिसको आप मैटर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, प्रकृति उसको कहते हैं, ये तीनों चीजें एवर एग्जिस्टेंट होते हैं। तो सत मतलब जो एग्जिस्ट करता है, तो ये तीनों, तो ईश्वर भी उनमें से एक है। पर जो ईश्वर में है, बाकी दोनों में नहीं है, वह है कि ईश्वर चित है। चित समझते हैं, चैतन्य, कॉन्शसनेस। ये दूसरा डेफिनेशन आते ही मैटर उनमें से हट गया। मैटर, इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम सोल, 3 ऑफ ऑल देम आर एग्जिस्टेंट। मतलब आप कहेंगे बराबर हैं, पर चित शब्द आते ही, कॉन्शसनेस आते ही मैटर हट गया। मैटर ओनली एग्जिस्ट बट विदाउट कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस 2 चीजों में है, किसमें? परमात्मा और आत्मा में। तीसरी चीज डिफाइन करता है और एक्सक्लूसिव है, सत चित आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, मत करिए ब्लिसफुल। ही इज नॉट फुल ऑफ ब्लिस, ही इज ब्लिस। जब आप कहते हैं कि मेरा घर पुस्तकों से भरा है, माई हाउस इज फुल ऑफ बुक्स, इट मीन्स बुक्स आर डिफरेंट, हाउस इज डिफरेंट। तो ईश्वर और आनंद दो अलग एंटिटी नहीं है, वो तो कॉमन लोगों को समझ नहीं है, इसीलिए बोल देते हैं ब्लिसफुल। पर हमारे वैदिक ट्रेडिशन में ईश्वर ही आनंद है। जब मोक्ष मिलता है तो आप ईश्वर को पाते हैं। लोग पूछते हैं, ईश्वर को पाकर क्या करूंगा? वो पता लगेगा तभी आप पाना चाहोगे, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। और वो खुशी, वो आनंद जो आपको बाजार में जो खुशी मिलती है चीजों को पाने से, उस खुशी से और वो परमानंद जिसका नाम ईश्वर है, उसमें क्या फर्क है? क्योंकि वो इटर्नल है, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, और वो सुप्रीम है, अल्टीमेट है। और ये बड़ा टेम्पररी है, बहुत क्वांटिटी में लिमिटेड है, और इसके साथ पेन भी साथ में आता है, बाय वन गेट वन फ्री में। आपकी लाइफ में हर वो चीज बाय वन गेट वन फ्री होता है, आप चाहो ना चाहो, जबरदस्ती आपको फ्री में मिलता है। जैसे आप कहेंगे मुझे खुशी चाहिए, मिलेगी, पर खुशी के साथ दुख भी साथ में आएगा, आप चाहो ना चाहो, वो आपके अंदर आएगा ही आएगा। जिन चीजों में खुशी मिलती है, उन्हीं चीजों में भी हमें दुख मिलता है। आप कहेंगे मुझे सम्मान, रेस्पेक्ट चाहिए, वो रेस्पेक्ट के साथ ही ह्यूमिलिएशन साथ में आएगा। क्यों? जैसे ही रेस्पेक्ट मिलने लगेगा, थोड़ी बहुत कहीं कम बहुत हो जाए तो मैं अपने आप को ऑफेंडेड फील करूंगा। ये गेट बाय वन गेट वन फ्री का दुनिया है। पर वो जो ईश्वर जो आनंद स्वरूप है, वो एक्सक्लूसिव है, उसमें कोई फ्री का चीज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर है। जितना पैसे का उतना मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। सच्चिद आनंद स्वरूप है परमात्मा। और क्या है? निराकार। आकार कहते हैं फॉर्म, निराकार मतलब फॉर्मलेस। क्यों? क्योंकि अगर आप ईश्वर को फॉर्म वाला मानने लगोगे, पर वो ईश्वर हमारे जैसा बन जाएगा, लिमिटेड। क्योंकि जिसका भी कोई फॉर्म है, इट हैज टू बी लिमिटेड। वो एक लिमिटेड स्पेस में रहने वाला, लिमिटेड टाइम में रहने वाला बनता जाएगा। और जो अनलिमिटेड यूनिवर्स का मालिक हो, तो वो लिमिटेड होकर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आप कहते हैं ईश्वर सब जगह है, तो सब जगह कोई लिमिटेड चीज नहीं हो सकता। कोई फॉर्म, ऐसा कोई एग्जांपल आपको पता है जिसका कोई फॉर्म है पर वो सब जगह है? देखिए, ये बड़ा बेसिक लॉजिक है। जिसका फॉर्म जितना ज्यादा ग्रॉस होगा, वो उतना कम जगह घेरेगा। पृथ्वी है, बहुत सॉलिड है, कम जगह घेरता है। लिक्विड बन जाएगा तो ज्यादा जगह घेरेगा। गैस बनेगा और ज्यादा जगह घेरेगा। एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उससे ज्यादा जगह घेरेगा। ज्यादा जगह घेरे मतलब ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो सकता है। तो ये कंडीशन है, अनलिमिटेड ऑल परवेडिंग होने का कंडीशन है कि इट हैज टू बी फॉर्मलेस। स्पेस में फॉर्म नहीं है, वो सब जगह मिलेगा। ये जरूरी है। और क्योंकि वो फॉर्मलेस है, इसलिए नेचुरली उसके बॉडी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं फॉर्म होने का, वो उसमें नहीं होगा। अगर उसको हम आकार वाला मानने लग जाएं, फिर उसमें भी पैदा होने का खतरा रहेगा। फिर ईश्वर को भी मरना होगा हमारे तरह, वो भी बीमार पड़ेगा हमारे तरह। उसमें भी बीवी बच्चों की परेशानियां होंगी, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप देखते भी हैं, बड़ी परेशानियां होती है देवताओं को भी। फिर अगर ये सब कुछ उसी के साथ होगा, वो खुद ही दुखी आत्मा है, उसकी भी बीवी बच्चे उसको परेशान करते हैं, उसको भी रहने की प्रॉब्लम है, फिर वो हमारा क्या करेगा? वो दुनिया, सूरज, चांद, धरती, ये इतने बड़े यूनिवर्स को क्या कंट्रोल करेगा? अगर हम ऐसा कोई मानता है, तो फिर हम अपने आप को कंट्राडिक्ट करते हैं। और शास्त्र भी, जब भी जो भी प्रिंसिपल्स आपकी डिस्कस करते हैं, वो अगेन रिपीट करूं, वो हमारे शास्त्रों का जो निचोड़ है उसके बेस पर, क्योंकि वो फॉर्मलेस है, इसीलिए वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मीन्स ऑल परविडिंग, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का मतलब, हम छोटे बच्चों को पूछते हैं कि भाई बताओ गॉड, ईश्वर कहां है? बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों को भी पूछिए, ऊपर वाला बोलते हैं हम सब हिंदू जो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ईश्वर सब जगह है, पर मुंह से निकलता है ऊपर वाला। भाई ऊपर वाला क्या चीज हो? ऊपर तो बादल है, सूरज है। ईश्वर कोई ऊपर नहीं रहता, ये तो बड़ा फॉरेन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। बाकी रिलीजन में है ईश्वर ऊपर रहता है, वो बादलों के ऊपर रहता है। ये ऊपर वाला हम दूसरों के साथ रहते रहते सीख गए, अपनी चीजों के बारे में ना जानना, दूसरों के बारे में ज्यादा जानना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो, जो आदमी खुद के बारे में जानता है और दूसरों के बारे में जानता है, वो बहुत अच्छा बैलेंस्ड पर्सन है। जो दूसरों अपने बारे में बहुत जानता है, दूसरों के बारे में कम जानता है, उसकी गाड़ी ठीक ठाक चलेगी। पर जो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता, दूसरों के बारे में बहुत जानता है, वो अपने लिए भी डेंजर है, दूसरों के लिए भी डेंजरियस है। और मोस्ट ऑफ हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, खास करके इंडियन ओरिजिन, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा दिखती है। उनको पूछो, दुनिया का नॉलेज सब उनके पास है, अपने धर्म के बारे में पूछो लिमिटेड है। वो टीवी देख के महाभारत जाने हैं, टीवी देख के राम रामायण जाने हैं, इधर उधर सुनसान के थोड़ा ज्ञान है, बस गूगल पढ़ के उन्होंने सीखा है। पर आप उनको पूछो दूसरे रिलीजन के बारे में, घंटों एक्सपर्ट के तरह लेक्चर देंगे। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, वो अपनी चीजों को दूसरों से एनालाइज करते हैं। अपनी चीजें पहले जान लीजिए, दूसरों को जानिए, फिर आपको आसानी से आप कंपेयर करेंगे, फिर जो नॉलेज होगा वो सही नॉलेज होगा, फिर उसमें फॉल्स नॉलेज का चांस कम रहेगा। ईश्वर सब जगह है, तो जब हम बच्चों को पूछते हैं, अच्छा बताते हैं सब जगह ईश्वर है, बताओ सब जगह का मतलब क्या है? ऊपर है जी, है नीचे है जी, पानी के अंदर है, तुम्हारे अंदर है, आंखों में, कानों में, नाकों में, कहां नहीं है? ऐसा कोई नहीं हो सकता। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, तिलेशु तैलम दधिनी व सर्पी, कहते हैं जैसे तिल में, तिल समझते हैं, सीसम सीड, मस्टर्ड सीड, कोई भी सीड हो जिसमें से तेल निकलता हो, मूंगफली की सीड है, सोयाबीन की सीड है, उसमें से तेल निकलता है। और आपकी बच्चा पूछे ये तेल कहां से आया, आप कहोगे सोयाबीन की सीड से आया, मस्टर्ड की सीड से आया, तो लाएगा दो चार सीड लाएगा, उसको तोड़ेगा, ब्लेंड करेगा, बोले कहां तेल, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखेगा ही नहीं। पहले जमाने में लकड़ी से आग निकालते थे, अभी भी आप दो पत्थर को रगड़ो तो आग निकलेगा, तो आग कहां से आया जी? पत्थर से आया, लकड़ी से आया, वो काटेगा, कहीं भी आग नहीं है। आग कहां पर है? वो उसके हर कण में, हर जर्रे में है, सर्वव्यापक। जब भी सर्वव्यापक होगा उसका कंडीशन होगा इनविजिबल। इनविजिबिलिटी द फर्स्ट कंडीशन टू बी ऑल परवेटिंग। वो ईश्वर सब जगह है, बिल्कुल वैसे जैसे मस्टर्ड सीड में तेल है, जैसे लकड़ी के अंदर आग है, जैसे पत्थर में आग है, जैसे जमीन के नीचे पानी है, सब जगह है। और इसीलिए वो अजन्मा अनंत, अजन्मा मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, निर्विकार मतलब कोई उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, अनादि मतलब जो उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, अजर मतलब जिसमें कोई बुढ़ापा नहीं आता, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है, नित्य मतलब इटर्नल, अनुपम मतलब एक्सक्लूसिव। ये सब इंटर रिलेटेड है। जो मरे पैदा होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो पैदा होगा। अगर आप मरे नहीं तो पैदा ही नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे तो आप मरेंगे नहीं, पैदा नहीं होंगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगी, जवानी भी नहीं आएगी। जब बुढ़ापा नहीं आएगी, नहीं मतलब जवानी भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। न तस्य कार्यम कारणम च भिद्यते, न तत्समाश्चाभ्यधिकोश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बला बल क्रिया च। श्वेताश्वेतर उपनिषद का ये मंत्र है। यजुर्वेद कहता है अज एक अपाद, वो अज है, अजन्मा है, अनबर्न है, अनडिविजिबल है, सपर्यगा छुक्र मकायम, वो बॉडीलेस है, फॉर्मलेस है। और ऐसा ईश्वर न भूतो न भविष्यति, अनुपम है, एक्सक्लूसिव है, विदाउट एनी अदर एग्जाम्पल। ईश्वर का एग्जाम्पल देना है, कोई सिनोनिम ढूंढना है, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा जो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, जब हम कहते हैं ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल है। ऑल पावरफुल क्यों? क्योंकि जिसने गैलेक्सीज बनाया, यूनिवर्स बनाया, स्टार बनाया, प्लैनेट बनाया, छोड़िए ये तो बड़ी लंबी लंबी बात है, आपके शरीर बनाया। और ये शरीर आज भी हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, जो नर्व सिस्टम है, जो माइंड है, जो ब्रेन है, जो बॉडी है, इतने साइंस में डेवलपमेंट होने के बाद भी अभी तक हम सिर्फ अपनी ये फिजिक को भी, साइक और फिजिक बोथ को भी हमने मुश्किल से 10-15% नहीं समझ पाए। इतने सारे समझने को बाकी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसको बनाने वाला भी वही है। उतनी एबिलिटी, उतनी कैपेबिलिटी, उतनी क्षमता उसके अंदर है। लोग सवाल पूछते हैं कभी कभी कि अच्छा सर्वशक्तिमान मतलब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता ईश्वर, वही कर सकता है जो वो करना चाहता है। मतलब सब कुछ करने का अर्थ नहीं कि वो अपने आप को मार भी सकता है। वो किसी ने पूछा वो सुइसाइड कर सकता है, सुइसाइड क्यों करेगा भला? और ये टेंडेंसी क्यों बनी, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारा कुछ स्वार्थ है। तो स्वार्थ क्या है, भाई मैंने बहुत गलत काम किया है तो ईश्वर माफ कर देगा, कर देगा, क्यों, वो सर्वशक्तिमान है। अब ये हमें चाहिए, बस यही चाहिए, भाई मेरे सारे गलत काम को माफ कर दे, ये कंप्रोमाइज कर सकता है तभी सर्वशक्तिमान है। सूरज बनाया चांद बनाया हमें क्या फर्क पड़ता है, बस ये बता दो मेरे पापों का। और यहीं से मॉडर्न रिलीजियंस पैदा होते हैं, वो हमें ये सपोर्ट देते हैं, डोंट वरी वी आर हियर, कन्फेस कर लो सारे ईश्वर माफ कर दिया, गंगा में डुबकी लगाओ सारे ईश्वर ने माफ कर दिया, वो उधर मुंह करके इतने बार नमाज पढ़ो ईश्वर ने माफ कर दिया, ये भागवत पुराण का गरुड़ पुराण का इतना पढ़ लो ईश्वर ने माफ कर दिया। यहीं से मॉडर्न रिलीजन पैदा होते हैं, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को लोगों की जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको क्याश करने के लिए। पर हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर का सर्वशक्तिमान का अर्थ जो न्याय, जो जैसा है, जो जैसी है, उसी हिसाब से करने का, वो हुमिशियली करने का नाम नहीं है। बाकी कुछ चीजें हम अगले बार चर्चा करेंगे, इसके साथ दूसरे तीसरे नियम को जोड़ करके हम बाकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई प्रश्न हो आप बाद में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति।